उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी
समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों से जानकारियां। तो आधे घंटे के लिए देश के पूर्वोत्तर के हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों की ओर हम आपको लिए चलते हैं। आप पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, प्रकृति की सुंदरता और पारंपरिक विरासत को शब्दों के माध्यम से महसूस करेंगे। ऐसा पूर्वोत्तर जो सुंदर है, प्रकृति और लोगों के बीच आपसी प्यार और सद्भाव जहां की शक्ति है। ऐसा पूर्वोत्तर जिस पर देश गर्व करता है, जहां की विविध भाषाएं और बोलियां अलग होते हुए भी सबको देश प्रेम के एक सूत्र में बांधे रखती हैं, और ऐसा पूर्वोत्तर जो अनेक क्षेत्रों में कीर्तिमान बना रहा हो। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर।
पूर्वोत्तर डायरी।
हमेशा बात करते हैं कि पूर्वोत्तर की हरियाली और प्राकृतिक संपदा अपार है। तो आपको बताते हैं कि मिजोरम में हाल ही में पूरे राज्य में हरित मिजोरम दिवस मनाया गया। राज्य सरकार ने 11 जून 1999 को हरित मिजोरम दिवस की शुरुआत की थी और उसके बाद से पिछले साल तक कम से कम 45,63,326 पौधे लगाए जा चुके हैं। ये जानकारी इस मंगलवार को राज्य पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों ने दी। हरित मिजोरम दिवस 2024 के अवसर पर राज्य भर के हजारों हरित कार्यकर्ताओं के साथ इसमें भाग लेते हुए राज्यपाल हरिबाबू कम्बमपति ने मंगलवार को राजभवन के सर्कुलर लॉन की बाड़ पर राज्य वृक्ष मेसुआ फेरिया के पौधे लगाए। इस अवसर पर राज्यपाल ने मिजोरम के लोगों से हरित पहलों में पूरे दिल से शामिल होने की अपील की। हरित पहलों में वन और वन्य जीवों का संरक्षण, पुनर्वनीकरण, वन से संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, नदी क्षेत्र का संरक्षण और अन्य संबंधित सभी कदम शामिल हैं। ये सभी राज्य में समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह आइजोल के पास बिराट लैंग में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर सभागार में आयोजित किया गया, जहां स्थानीय प्रशासन मंत्री श्री लाल सामरीवुंगा ने हरित मिजोरम दिवस 2024 का उद्घाटन किया। अधिकारियों और छात्रों ने पासी के जोखावसांग क्षेत्र में नए असम राइफल्स परिसर में सैकड़ों पौधे लगाए। तो इस तरह से राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों, कस्बों और गांवों में हरित मिजोरम दिवस मनाया गया और बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए।
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम पार्टी के अध्यक्ष प्रेमसिंह तामाङ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
कार्यक्रम की शुरुआत राज्य के मुख्य सचिव वीवी पाठक द्वारा मुख्यमंत्री के नियुक्ति पत्र को पढ़कर हुआ था।
अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर बाय वर्च्यू ऑफ द पावर वेस्टेड इन मी अंडर क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 164 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आई लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर ऑफ सिक्किम डू हेयर बाई अपॉइंट श्री प्रेम सिंह तामाङ गोले टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स चार्ज ऑफ हिज ऑफिस गिवन एट राजभवन सिक्किम ऑन द 10th डे ऑफ जून इन द ईयर 2024 28th जेस्ट 1946 साका इन द 75th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया।
तामाङ ने सोमवार को राजधानी गान्तोक के पालजर स्टेडियम में आयोजित एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कैबिनेट के 11 सदस्यों के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने प्रेमसिंह तामाङ को मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाए।
प्रेम सिंह तामाङ ईश्वर को नाम में शपथ लिंदछु कि म विदुई द्वारा स्थापित भारत को संविधान प्रति साँचो श्रद्धा निष्ठा राख्नेछु। म भारत को संप्रभुता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्नेछु। म सिक्किम राज्य को मुख्यमंत्री का रूप में आफ्ना कर्तव्यहरुको सदापूर्वक र शुद्ध अन्तस्करणले निर्वहन गर्नेछु तथा म भय वा पक्षपात अनुराग वा द्वेष बिना सबै प्रकारका मानिसहरुप्रति संविधान र विधि अनुसार न्याय गर्नेछु। म प्रेम सिंह तामाङ ईश्वरको नाममा शपथ लिन्दछु कि सिक्किम राज्यको मुख्यमन्त्रीका रूपमा मेरो विचारका लागि ल्याइने अथवा मलाई ज्ञात हुने कुनै पनि विषय कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई यस्तो मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफ्ना कर्तव्यहरूको समुचित निर्वहनका लागि जति अपेक्षित छ त्यस सिवाय म प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपले संसूचित वा प्रकट गर्ने छैन।
शपथ ग्रहण समारोह में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अनौठी शैली में प्रार्थना, ईसाई गायक मंडली द्वारा भजन गायन, संस्कृत महाविद्यालय द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साथ राज्य की शांति समृद्धि खुशियाली के लिए वैदिक मंत्रोच्चार भी शामिल किए गए थे। इसके बाद राज्यपाल ने मंत्री परिषद के सदस्यों सोनम लामा, अरुण उप्रेती, सामडुप लेप्चा, भीम हांग लिम्बू, भोजराज राय, जीटी ढुंगेल, पूरण गुरुंग, पिंचो नामगेल लेप्चा, एनबी दाहाल, राजू बस्नेत और छिरिंग टी भोटिया को शपथ दिलाई।
आई सोनम लामा डू स्वर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बियर टू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाई लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया that I will faithfully and constitutionally discharge my duty as a minister for the state of Sikkim and that I will do right to all manner of people in accordingly with constitutional and law without fear or favor, officiance or ill will. Sonam Lama do swear in the name of God that I will directly or indirectly communicate or reveal to any person or person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as minister for the state of Sikkim except as may be required for the due discharge of my duty as such minister. Thank you.
इस अवसर पर सिक्किम और राज्य बाहर के गण्यमान्य लोग भी उपस्थित थे। इसी तरह राज्य के सभी 6 जिलों के बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए गान्तोक नगरपालिका क्षेत्र के सभी शैक्षणिक संस्थान बंद थे। वहीं सरकारी कार्यालय भी 12 बजे से बंद कर दिए गए थे। राज्य विधानसभा चुनाव 2024 में एसकेएम पार्टी ने 32 में से 31 सीट जीतकर दूसरी बार सरकार बनाई है। 2019 के चुनाव में एसकेएम केवल 17 सीट जीतकर 25 वर्षीय सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ पार्टी सरकार को हटाने में कामयाब रही थी।
जा
11वीं सिक्किम विधानसभा के पहला सत्र कल बुधवार को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सम्पन्न हुआ, जिसमें निगमा नर्बु शेर्पा को अध्यक्ष और विधायक राजकुमारी थापा को उपाध्यक्ष चुना गया। 11वीं सिक्किम विधानसभा के पहले सत्र में बुधवार को एसकेएम पार्टी के 31 सदस्यों और हाल ही में सम्पन्न चुनाव में निर्वाचित एसटीएफ पार्टी के एक सदस्य ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर संजीत खरेन ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री और सदन के नेता प्रेमसिंह तामाङ ने शपथ ली, उसके बाद अन्य सदस्यों ने क्रमबद्ध रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से मिङमा नर्बु शेर्पा को अध्यक्ष और विधायक राजकुमारी थापा को उपाध्यक्ष चुना गया। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गान्तोक से मैं दिलीराम दुलाल।
और अब बात त्रिपुरा की। त्रिपुरा राज्य के कृषि मंत्री रतनलाल नाथ ने इस सप्ताह ओमान के लिए जीआई टैग क्वीन किस्म के अनानास की एक खेप को रवाना किया। हमारे त्रिपुरा संवाददाता कुणाल शिंदे ने हमें बताया कि इस खेप में क्वीन किस्म के करीब 600 अनानास हैं, जिन्हें स्टैगिंग की विशेष प्रक्रिया के माध्यम से उगाया जाता है। क्वीन किस्म के अनानास फल की एक बेहतरीन किस्म है और अनानास की इस बेहतरीन किस्म को केवल त्रिपुरा में ही उगाया जाता है। क्वीन के अलावा राज्य में उगाई जाने वाली अनानास की एक और प्रसिद्ध किस्म क्यू है। त्रिपुरा क्वीन अनानास की खेती कर रहा है और ये किसानों को बड़ा अच्छा बाजार भी दे रहा है। कृषि विभाग भी अनानास उगाने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रसंस्करण सामग्री के साथ साथ कुछ राशि आवंटित करके किसानों की मदद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कृषि मंत्री ने बताया कि अनानास की 5 मीट्रिक टन क्यू किस्म का अनानास भेजने के लिए दुबई के साथ भी बातचीत चल रही है। तो आप जब भी कभी त्रिपुरा जाएं तो बेहद उत्तम किस्म के अनानास का स्वाद लेना ना भूलें।
सूर्य तुझे नमस्ते, धरती तुझे नमन।
ये कहा जाता है कि भारत में योग की उत्पत्ति लगभग 5000 साल पहले हुई थी और तब से इस शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक अभ्यास ने मानव जाति को बेहतर स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए उसे बनाए रखने में मदद की है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आप शांति यानी शांति और सिर्फ शांति की तलाश में हैं, तो योग एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको निश्चित रूप से समय निकालना चाहिए। हम दुनिया भर के लोगों के बीच योग के महत्व और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के अमूल्य उपहार के बारे में बातचीत की, जो प्राचीन भारतीय परम्परा ने दुनिया को दिया है। अपने बेहद प्रभावशाली और ठोस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि योग मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य लाने में मदद करता है। इस पहल की सराहना की गई और फिर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में नामित करने के प्रस्ताव पर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया। योग दिवस के प्रस्ताव को 170 से अधिक देशों का समर्थन मिला और फिर अगले वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 21 जून को मनाया गया और तभी से हर साल ये परंपरा के तौर पर दुनिया भर में 21 जून को मनाया जाता है। पहले की तरह इस साल भी 21 जून को देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। शरीर, मन और आत्मा को फिट रखने की भावना के साथ इस दिन को मनाने के लिए मुख्य रूप से खेल के मैदानों में तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। अगरतला में राज्य खेल और युवा मामलों का विभाग अपने सभी संबद्ध खेल और फिटनेस क्लबों को इसके लिए तैयार कर रहा है। कई खेल और योग संघों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए योग प्रेमियों और अभ्यासकर्ताओं के लिए सप्ताह भर या करीब 10 दिन तक चलने वाले योग शिविर शुरू किए हैं। अगरतला में पश्चिम त्रिपुरा योग एसोसिएशन, जो कि राज्य खेल विभाग की एक संबद्ध खेल संस्था भी है, उसके तत्वावधान में बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई योग शिविर कुछ दिन पहले शुरू कर दिए गए। एसोसिएशन एगिए चोलो संघ भाटापुकुर में स्वामी विवेकानंद क्लब, इंद्रनगर योग क्लब, पतंजलि योग संस्थान, राधानगर योग क्लब और ऐसे ही कई संगठनों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए पश्चिम त्रिपुरा योग एसोसिएशन के सचिव उत्तम देवनाथ ने बताया कि उन्होंने सामुदायिक स्तर पर 33 प्राथमिक योग इकाइयों में योग शिविर आयोजित करने शुरू किए हैं।
लाइक इन द पास्ट दिस ईयर टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 21st ऑफ जून अक्रॉस द कंट्री एंड ग्लोब। To mark the day with the spirit of keeping the mind, body and soul fit, preparations are going on in full swing.
ये शिविर 20 जून को पूरे होंगे और उसी दिन राजधानी अगरतला में एक योग रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के मुख्य कार्यक्रम के हिस्से के रूप में हजारों योग प्रतिभागी इस दिवस को मनाने के लिए 21 जून को अगरतला अंतर्राष्ट्रीय मेला ग्राउंड में योग के कई अभ्यासों का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके प्रतिभागी स्वयं और समाज के लिए योग विषय पर योगाभ्यास का प्रदर्शन भी करेंगे। इस बीच त्रिपुरा में राज्य योग संस्थान में योग के विभिन्न आसन का अभ्यास बच्चे और बड़े बहुत ही मनोयोग के साथ कर रहे हैं। पिछले 44 वर्ष से योग का अभ्यास कर रहे राज योग संस्थान के प्रभारी राजन कुमार पाल ने हमें बताया कि एसटीआई के लगभग 250 छात्र और लगभग 3000 योग प्रेमी 21 जून को अगरतला के हापनिया अंतर्राष्ट्रीय मेला ग्राउंड में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स मेन प्रोग्राम थाउजेंड्स ऑफ योगा पार्टिसिपेंट्स विल डेमोंस्ट्रेट सेवरल एक्सरसाइजेस ऑफ योगा एट द अगरतला इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड ऑन 21st जून टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ही सेड that the participants will also demonstrate yoga practices on the theme Yoga for Self and Society. Kunal Shinde from Akashvani Agartala.
Surya tujhe namaste dharti tujhe naman।
21 जून को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर त्रिकोणासन का वीडियो साझा किया है। वीडियो में स्वास्थ्य लाभ के लिए इस आसन को सिखाने की जानकारी दी गई है। ये आसन कंधों, पीठ और एकाग्रता में सुधार के लिए किया जाता है।
त्रिकोण आसन, इस आसन को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे करते समय हमारा शरीर यानी हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी एक त्रिकोण का आकार ले लेते हैं। तो इस आसन को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर उठाएं ताकि वो आपके दोनों कंधों की सीध में आ जाए। सुनिश्चित करें कि हाथ एकदम सीधे और एक स्तर पर हो, ऊपर नीचे या आगे पीछे नहीं।
सूर्य तुझे नमस्ते धरती तुझे नमन।
आइए अब चलते हैं नागालैंड। इस अंक में हम आओ नागा जनजाति के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नागालैंड 17 प्रमुख जनजातियों का घर है और आओ नागाओं में से एक प्रमुख जनजाति है। ये ईसाई धर्म को मानने वाली पहली नागा जनजाति थी और इसके आधार पर आउस ने ईसाई धर्म के साथ ही पश्चिम से आने वाली शिक्षा प्रद जानकारियों का लाभ उठाया। नागालैंड के जिलों में से एक मोकोकचुंग को आओ नागा जनजाति का घर माना जाता है।
आउट ऑफ 17 रेकग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ नागालैंड, द आउज आर कंसिडर्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप। द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द आउज आर चुंगली, मोंगसांग एंड चांगकी।
नागालैंड की 17 मान्यता प्राप्त जनजातियों में से आओ को दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह माना गया है। आओ लोगों की मूल भाषा है चुंगली, मोंगसेन और चांगकी। बागवानी, कृषि और वानिकी इनका मुख्य व्यवसाय है। अधिकांश नागा जनजातियों की तरह ही गांव के लोग मुख्य रूप से झूम खेती करते हैं। झूम खेती कृषि की एक ऐसी विधि है जहां जंगलों को पहले साफ किया जाता है और सूखे अवशेषों को हटाया जाता है और उसके बाद उस जमीन पर, तैयार जमीन पर बीज बोए जाते हैं। जनजाति दो मुख्य रूप से त्योहार मनाती है, यानी इनके दो त्योहार मुख्य हैं, मोत्सू और सुरंग में मोंग। मोत्सू सामुदायिक जुड़ाव का त्योहार है जो हर साल मई के पहले सप्ताह में 3 दिन के लिए मनाया जाता है। बुआई हो जाने के बाद मोत्सू मोंग का निरीक्षण करते हैं और वहीं सुरंगे मोंग समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है जो फसल की कटाई के तुरंत बाद मनाया जाता है। इसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है, इसके बाद नृत्य किए जाते हैं और फिर विभिन्न व्यंजन बनाकर दावत की जाती है जो कि त्योहार का एक प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि इसे एकता के निर्माण का स्रोत भी कहा जा सकता है। इस जनजाति की समृद्ध और विविध कलाकृतियाँ, वेशभूषा और जीवन शैली नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक एक विशिष्ट कला पच्चीकारी की झलक प्रदान करती है जो अन्य नागा जनजातियों के बीच भी अद्वितीय कला मानी जाती है। ये लोग अपनी पारंपरिक पोशाक, आभूषण, त्योहार, लोक नृत्य और गीत के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इनके वस्त्रों के डिजाइन जानवरों की हड्डियों, जीव जंतुओं, मछलियों, पक्षियों को दर्शाते हैं। एवो जनजाति की पोशाकें बुने हुए वस्त्र और सजावटी वस्तुओं के संयोजन से डिजाइन की जाती हैं। इनकी पोशाक बेहद सुंदर होती है और अपनी वेशभूषा को सजाने के लिए ये बड़े पैमाने पर कौड़ी, सीट, हाथी दांत, पीतल के बाजूबंद, विशाल सफेद सीपियों के साथ ही पेंट का भी इस्तेमाल करते हैं और अपने बैक के हेड ड्रेस और शिकार के औजारों को सजाने के लिए पक्षियों के पूंछ के पंख और चमकीले रंगों के झालर का उपयोग भी करते हैं। नागा महिलाओं को अपने सिर और शरीर को सजाने का बहुत शौक होता है। वे खुद को हार, झुमके, बाजूबंद, चूड़ियां और सिर पर पहने जाने वाली पोशाकों से सजाती हैं। नागा अपने लोक साहित्य में बहुत समृद्ध हैं। उनका लोक साहित्य लोगों की पृष्ठभूमि, उनके मन, चरित्र, धर्म, संस्कृति, अंधविश्वासों और साथ ही साथ वर्जनाओं को भी दर्शाता है।
The folk literature reflects the background of the people, their mind, character, religion, culture, superstitions and taboos. Asuno from Akashvani News, Kohima.
बात मणिपुर की। मणिपुर सहित भारत का समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट का एक हिस्सा है और घाटी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में विविध स्वदेशी फलों की फसलें यहाँ होती हैं। हालांकि इन स्वदेशी फलों की अधिकांश फसलें उचित भंडारण और विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों में प्रसंस्करण के ज्ञान की कुछ कमी के कारण मौसम में बर्बाद भी हो जाती है और इस अंतर को स्वीकार करते हुए ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ट्राइफेड ने कुछ साल पहले मणिपुर के उखरुल जिले में स्वदेशी फलों के विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों के प्रसंस्करणों का ज्ञान देना शुरू किया, जागरूकता पैदा करनी शुरू की। हमारे इम्फाल संवाददाता जे थोकचोम ने एक रिपोर्ट हमें भेजी है।
द हिल डिस्ट्रिक्ट उखरुल ऑफ मणिपुर इज वेल नोन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ वेराइटीज ऑफ फ्रूट थ्रू आउट द ईयर्स। Every year from May and to mid-June is known as plum season in the district where this colorful fruit is abundantly found in many towns and villages. This year, the continued dry weather has become a delight moment for many women in Ukhrul as the weather favor for a good harvest of plum fruits.
Manipur ka pahari zila Ukhrul varshon se phalon ki vibhinn kismon ki uplabdhata ke liye jana jata hai. Har saal mai ke ant se lekar june ke madhya tak zile mein ber ka mausam hota hai. Ye rangeen sa dikhai dene wala phal kai kasbon aur gaamon mein bahutayat se paya jata hai. Is varsh lagatar shushk mausam se Ukhrul mein kai mahilaon ke liye badi khushi ka samay ban gaya hai kyunki ye mausam plum फल की अच्छी फसल के लिए बहुत अनुकूल है. स्वयं सहायता समूहों की इन महिलाओं के लिए प्लम के फल से विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पाद बनाए जाते हैं और इस तरह आय अर्जित करने का ये कह सकते हैं कि एक तरह से बेहतरीन समय है. क्या आप जानते हैं कि इन उत्पादों में क्या क्या शामिल है? इनमें शामिल है स्वादिष्ट प्लम कैंडी, प्लम जैम, प्लम जूस, प्लम चॉकलेट और नमकीन सूखा प्लम और प्लम फलों के कुछ अन्य उत्पाद भी इसमें शामिल किए गए हैं.
For these women of self-help groups, this is the season to earn income through plum by processing into different value-added products. These products include plum candy, plum jam, plum juice, plum chocolate, salted dry plum and other products of plum fruits.
जब देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्राइफेड ने उखरुल जिले में स्वदेशी फलों के विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों के प्रसंस्करण की अपनी पूरी जानकारी को साझा किया और अब देखते ही देखते ये पहल उखरुल जिले की कई महिलाओं के लिए आय का मुख्य स्रोत बन गई है. आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने वाली एक सदस्य ने कहा कि वे बेर फल के अलावा सेब, करौंदा, किंग चिली, नींबू और अन्य कुछ उत्पादों से मूल्य वर्धित उत्पाद बना रहे हैं.
आई एम रिंचु लारुपुई फ्रॉम यूफ्रून, proprietor of Chamte Foods. I process seasonal fruits and vegetables which are available in Ukhrul. Some of the items are plum candy, wild apple candy, gooseberry candy, king chili pickle, mixed vegetable pickle, lemon juice, fruit jam and chutney, etc. I do marketing of my products in the local Imphal, Dimapur and several cities outside Manipur. Through this business, I raise my children and sustain my family needs amicably. Thank you.
ट्राइफेड ने महिलाओं को इन मूल्य वर्धित उत्पादों के विपणन की भी सुविधा प्रदान की है और इस सभी प्रयासों से अब मणिपुर के उखरुल जिले की ये समृद्ध प्राकृतिक उपज विभिन्न भारतीय शहरों में भोजन प्रेमियों तक बड़े आराम से पहुंच रही है.
This rich natural produce of Manipur's Ukhrul district has reached food lovers in various Indian cities. JJ Toksom, Akashvani News, Imphal.
पूर्वोत्तर का समूचा इलाका हवाई, सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है. कोई भी जगह अब दूर नहीं है तो परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पूर्वोत्तर राज्यों को अवश्य ही देखें और आनंद लें. आप यहां पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और साथ ही आप पूर्वोत्तर में अद्भुत आनंद, अद्भुत क्षमता और कौशल को स्वयं देखेंगे और उसे महसूस करेंगे. तो अपने देश को देखिए और जानिए और चले आइए पूर्वोत्तर की ओर.
एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये. एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में.
अब आपसे अनुमति लेने का समय आ पहुंचा है. कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं. हमें आपकी प्रतिक्रिया का हमेशा ही इंतजार रहता है. हमारा ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com. प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है. नंबर नोट कीजिए 9289094044 9289094044.
फूल के खिल खिलाती सावन बरसाती हंस रही है कौन ये मोगरी जगाती.
और अब अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। अब हमें अनुमति दीजिए, आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
पूर्वोत्तर गाइड।